नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ प्रत्यक्ष वार्ता का प्रस्ताव ठुकराया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, आवागमन, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उन्होंने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर मामले में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नेनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत इन लोगों की राष्ट्रीयता की पुष्टि के लिए बांग्लादेश से सहयोग लेता रहा है और उसके बाद ही वापस भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। उन्होंने बताया कि इनमें से कई अनुरोध अभी बांग्लादेश के पास लंबित हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि रूस और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंध मजबूत हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक रही।
The negotiating team which came from
बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ प्रत्यक्ष वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी बैठक का कोई औचित्य नहीं है। श्री पुतिन ने ये टिप्पणी कल सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के प्रमुख आर्थिक मंच के दौरान कही। एक दिन पहले श्री जेलेंस्की ने युद्ध समाप्त करने के लिए खुले पत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष वार्ता का आह्वान किया था। श्री पुतिन ने कहा कि जेलेंस्की का पत्र उन्हें गंभीर नहीं लगा। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन द्वारा उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करने से पता चलता है कि रूस की युद्ध समाप्त करने की इच्छा नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा व्यक्त की है। भारत वर्तमान में स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस बीच श्री पुतिन ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि वैश्विक सॉफ्टवेयर बाजार में भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका के अनुसार क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। अमरीकी सेना ने गोरुक और केश्म द्वीप स्थित रडार केंद्रों को निशाना बनाया। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
अमेरिका ने ब्रिटेन, डेनमार्क और कुवैत को लगभग 3 अरब डॉलर के संभावित सैन्य उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। अमरीकी विदेश विभाग ने ये जानकारी दी है। सबसे बड़ा रक्षा सौदा कुवैत के साथ किया गया है। इसके अंतर्गत कुवैत को लगभग 1 अरब 98 करोड़ डॉलर की लागत से ड्रोन रोधी प्रणालियां और संबंधित उपकरण खरीदने की अनुमति दी गई है। वहीं डेनमार्क को लगभग 84 करोड़ 20 लाख डॉलर की लागत से 200 लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें और संबंधित उपकरण खरीदने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा ब्रिटेन को लगभग 16 करोड़ डॉलर की लागत से बड़े विमानों की सुरक्षा के लिए इंफ्रारेड प्रतिरोधक प्रणाली और संबंधित उपकरण खरीदने की अनुमति दी गई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट कीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। प्रज्ञानानंद ने 18 अंक के साथ खिताब अपने नाम किया। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काका मिगाहारा में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से और जापान ने मलेशिया को 8-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ प्रत्यक्ष वार्ता का प्रस्ताव ठुकराया। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।